الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. اللہ نجیب بھائی کو سلامت رکھے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ کلاس تھوڑی سی لمبی ہو گئی، میرا فائدہ ہو گیا کیونکہ آج میری بالکل تیاری نہیں، میں سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو کچھ پڑھ کر کے ہی سنا دوں گا کتاب میں سے، تو موقع نہیں ملا، مصروف نظر زیادہ ہو گئی تھی آج، تو گاڑی میں ہی تھوڑا بہت پڑھنا نصیب ہوا. بہرحال تو ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں پڑھ رہے تھے پچھلی کلاس کے اندر، تو سچی بات یہ مجھے خود یاد نہیں ہے آخری بات ہم نے کیا کری تھی، کسی کو یاد ہے آپ میں سے؟ جی پانے. تین طرح کی سنتوں کے بارے میں، کہ سنتوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں. اچھا یعنی وہ تو ٹینجنٹس کے اندر جو ہم باتیں کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے ضمن میں جو اور باتیں نکل آتی ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا بات یاد ہے؟ ہاں مماثلت ہی چل رہی تھی نا، نسبت اتحادی والی ہی والی ڈسکشن ہی چل رہی تھی. ٹھیک ہے، تو آپ کو شاید کہا بھی تھا آخری کلاس میں کہ ہم جو ہے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پھر اب وفات کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے، اور کچھ اور ان کی زندگی کے کارناموں کے بارے میں کچھ اور بات کر کے پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فتنوں کی سرکوبی جب کر لی تھی تو آپ نے سب سے پہلے پھر ایران کی طرف پیش قدمی فرمائی تھی، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ ایران کے اوپر حملہ کرو. ایران کے بارڈر کے اوپر کچھ قبائل تھے، عرب قبائل، جن کو کہ ایرانی لوگ بہت تنگ کیا کرتے تھے، تو انہوں نے آلریڈی جو ہے نا وہ ایک گوریلا وارفیئر تو سٹارٹ کری ہوئی تھی پہلے سے. اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کی مدد کے لیے بھی بھیج دیا تھا، اور ایران میں کافی ساری فتوحات حاصل کریں. پورا ایران فتح نہیں ہوا، پورا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا تھا، وہ تو جا کر کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حل ہوا تھا. تو اسی اثنا میں جو ہے وہ مسلمانوں نے روم کی طرف بھی پیش قدمی شروع کر دی تھی، رومنز کی طرف، ٹھیک ہے. تو رومنز کے ساتھ بھی بہت ساری لڑائیاں ہوئی تھیں، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور دوسرے بھی صحابہ کرام جو ہیں وہ لشکروں کو لیڈ کر رہے تھے. اچھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی تھی حمص اور دمشق کے قریب، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا اس زبردست کامیابی کا جو رومنز کے خلاف. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس خط کو پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مسلمانوں کی مدد کی اور میری آنکھوں کو فتح کی خوشخبری سے ٹھنڈا کیا. ٹھیک ہے، فتح تو اللہ تعالیٰ ہی نے مسلمانوں کی مدد کر کے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس فتح سے خوشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ جو خط آیا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے 24 دن پہلے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تھا. ٹھیک ہے، اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب ملنے پر انہوں نے فرمایا کہ اب تم جو ہو نا وہ پھر عراق کی طرف روانہ ہو جاؤ، یعنی مستقل ادھر لڑ رہے ہیں پھر ادھر لڑ رہے ہیں ادھر لڑ رہے ہیں پھر ادھر لڑ رہے ہیں، تو ان لوگوں کی روز و شب جو ہے نا پھر اب جہاد کے اندر ہی خرچ ہونا شروع ہو گئے تھے. ایک جگہ سے فارغ ہوتے تھے دوسری جگہ لڑنا شروع کر دیتے تھے. تو اب نا خالد بن ولید رضوان جو ہیں وہ چلے گئے عراق کی طرف، اور مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رہ گئے. ٹھیک ہے، ایران ایک میجر ایریا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، ٹھیک ہے، فارس جس کو کہتے ہیں، ईरान के आप थोड़ा सा वेस्ट में चले जाए तो ईरान के बॉर्डर के ऊपर इराक का इलाका कहलाता है। इराक, इराक भी जो है ये बहुत पुराना जमाने का बहुत पुराना एरिया है, यानी ये कोई नई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बल्कि तहजीब इंसानी जो है वो उसकी इब्तिदा के जमाने के इलाकों में से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वाक़ आता है वो इराक के इलाके का वाक़ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल यानी जमीन की इब्तिदा इन जगहों से हुई थी, सरजमीन हिजाज, बल्कि पूरा का पूरा ये अरेबियन पेनिनसुला और ये इराक का इलाका, शाम का इलाका, मिस्र का इलाका, ये हैं इस दुनिया की बिल्कुल इब्तदाई इलाके। बाकी सारी जगहों पर ना इंसानियत फिर आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड हुई है, ठीक है। तो इराक एक मेजर एरिया था, फिर इराक के बाद मजीद आप वेस्ट की तरफ आए तो फिर शाम का इलाका शुरू हो जाता है, ठीक है, जो कि आजकल सीरिया का मुल्क उसके अंदर आता है, और सदर्न टर्की उसके अंदर आता है, फलस्तीन पूरा का पूरा उसके अंदर आता है, और जॉर्डन का एरिया उसके अंदर आता है। ये चार पांच ममालिक मिल करके शाम का इलाका बनते हैं। तो शाम, इराक, ईरान और सरजमीन अरब और मिस्र, ये मेजर नाम है, इनको हम याद रखें, ठीक है। तो ये सारी जो है ना वो बहुत पुरानी पुरानी सिविलाइजेशन हैं। तो खालिद को फिर इराक की तरफ रवाना कर दिया और उनकी जगह पर मुसना बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन रह गए। तो उन्होंने ना फिर खालिद बिन रज़ियल्लाहु के जाते ही हर तरफ फौजी छावनियां मुकर्रर कर दी और जासूस वगैरह मुकर्रर किए और हीरा के मुकाम के ऊपर उन्होंने कयाम किया। ईरानियों ने उनके खिलाफ 10,000 का एक लश्कर भेजा, ईरान के बादशाह ने, ठीक है, मुसना बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला के खिलाफ। अच्छा, उस वक्त जो ईरान का बादशाह था उसने मुसना बिन हारिसा को ना एक खत लिखा और उसमें उसने लिखा कि मैं तुम लोगों की तरफ जो लश्कर भेज रहा हूं ना, ये तो मुर्गियां और खिंजीर चराने वालों का लश्कर है, ठीक है ना, ये जो है ना ये तो मुर्गियां चराने वाले मेरे लोग हैं, और जो यानी खिंजीर आपको पता है PIG, तो वो चराने वाले लोग हैं। तुम्हारी हैसियत यह है कि तुम्हारे मुकाबले पर मैं इन्हीं लोगों को भेज दूँ, यानी मुझे अपने असल जो फाइटर्स हैं ना वो तुम्हारे लिए भेजने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बस अपना जैसे पैरामिलिट्री किस्म का एक लश्कर तुम्हारे करीब तुम्हारे लड़ने के लिए भेज दिया है। ये इसने अपने तकब्बुर में इस तरह की बात करी, ठीक है। तो मुसना बिन हारिसा उन्होंने जो जवाब दिया ना वो हमारे लिए बड़ा अहम जवाब है कि बिल्कुल भी जो है ना वो ये जो हजरात थे ना सहाबा कराम, ये बिल्कुल भी रोब में नहीं आते थे, बिल्कुल मरूब नहीं होते थे कुफार से, क्योंकि इनकी नजर अल्लाह पे होती थी और अल्लाह की ताकत जो है ना उसके सामने किसी दूसरी ताकत की कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। तो इन्होंने उसको जवाब लिखा कि या तो तुम बागी हो कि तुमने जो है ना इस किस्म के लोग मेरे पास भेज दिए, तो तुम चाहते हो कि ईरान का बेड़ा गर्क हो जाए इस वजह से तुमने ऐसे लोग मेरी तरफ भेज दिए, या तुम झूठ बोल रहे हो, असल में तुमने ऐसे लोग नहीं भेजे, तुम झूठ बोल रहे हो, सीधी सी बात है मुझसे, ठीक है ना, तुमने अपनी रेगुलर आर्मी भेजी है। तो उन्होंने लिखा कि या तो तुम बागी हो अपने बादशाह से, या तुम जो हो ना वो झूठे हो, अगर तुम बागी हो तो इसका तो अंजाम तुम्हारे हक में बहुत बुरा ही होगा और हमारे हक में अच्छा होगा कि अच्छा ही हम तुम्हें खत्म करेंगे और हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर तुम झूठे हो ना तो अल्लाह ताला के यहाँ जिन झूठों का जिक्र है इनमें सबसे ज्यादा अजाब और दुनिया में सबसे ज्यादा रुसवाई उनकी होगी जो बादशाह है, ठीक है, यानी जो ऊपर वाला झूठ बोलता है ना वो सबसे ज्यादा बुरा इंसान होता है, ठीक है, बड़े की बात भी बड़ी होती है, अब वो अच्छी बात करे तो उसकी अच्छी बात भी सबसे बड़ी होती है क्योंकि वो बड़ा है, और अगर वो बुरी बात करे तो उसकी बुरी बात भी जो है ना वो सबसे बड़ी बुरी बात होती है, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन क्या ना वो डूअर जो है ना डूअर उसके ऊपर उसके एक्शंस डिपेंड करते हैं, तो अगर डूअर बड़ा है फाइल डूअर वो बड़ा है तो फिर उसका एक्शन भी बड़ा होगा, अच्छा तो वो भी बड़ा, बुरा तो वो भी बड़ा, ठीक है। तो ये एक उसूल है, इस वजह से हमें जब कोई रिस्पॉन्सिबल पोजिशन मिले, हमें कोई इज्जत वाला मुकाम मिल जाए, चाहे वो किसी भी तरह से मिले लेकिन इज्जत वाला मुकाम मिले, तो हमें फिर उसका लिहाज करना होता है कि भाई अब तो हम बड़ी पोजिशन के ऊपर हैं। जैसे आपकी अम्मी कहती है ना, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, आप तो बड़े भाई हैं, ये नहीं कहती हैं आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, आप तो छोटे भाई हैं, आप कहती हैं आप क्यों, आप तो बड़े भाई हैं, आपको तो बड़ों की तरह से बिहेव करना चाहिए था, ठीक है, तो बड़े होने का ये मतलब होता है। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा कि तुम जो है ना, अगर झूठे हो ना तो फिर तो तुम बड़े झूठे हो, क्योंकि तुम बादशाह हो। रही मुर्गियां और खिंदी चराने वालों की बात, तो मालूम होता है कि तुम्हारे पास बस ऐसे ही लोग अब बाकी रह गए हैं, जो कि इसी किस्म के लोग हैं। तो तुमने उन्हीं लोगों को भेजना था जो तुम्हारे पास अवेलेबल है भाई। तो कसरा जो था ना, उस किसरा बादशाह था, उसने ही भेजा था। तो वो ये जवाब सुन करके ना बड़ा बड़ा घबराया कि यार ये किस किस्म का जवाब मुझे मिल गया है। तो उसके जब दरबारियों को पता चला, तो दरबारियों ने भी उसको कहा कि आपने ना खामखा में ऐसा खत लिख दिया था, ना आप खत लिखते ना आपको आप ऐसा जवाब मिलता। ठीक है, बहरहाल जब दोनों लश्करों की लड़ाई हुई, तो इसने जो सिपे सालार बना के भेजा था हरमस को, हरमस एक आदमी था, उसको हाथी के साथ भेजा था इसने, और हाथी के ऊपर वो बैठा हुआ था। ईरान में थोड़े से हाथी होते थे, ठीक है, सबसे ज्यादा हाथी किधर होते हैं? अफ्रीका में होते हैं, और दूसरे नंबर पे कहाँ होते हैं? इंडिया में होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से सबसे ज्यादा हाथियों की जो फौज थी ना, वो किसने भेजी थी उस जमाने में? नजाशी की फौज होती है, वो हाथियों वाली फौज थी ना, काबतुल्लाह को ढाने के लिए जाई थी। तो उसके पास यानी अच्छे खासे हाथी थे, तो उसने हाथियों की फौज भेज दी। उसी तरह इंडिया के अंदर भी जो है ना, वो हाथियों की फौजें जाया करती थी, लेकिन ईरान जो है वो दरमियान में था, ना ज्यादा हाथी थे ना ज्यादा ऊंट थे उनके पास, तो उन्होंने एक हाथी भेज दिया। तो वो हरमस जो है वो हाथी के ऊपर सवार था। तो हाथी तो उन्होंने कभी उससे लड़ाई नहीं करी थी, वो कभी फेस नहीं किया था, तो मुसलमानों के लिए काफी मुश्किल हो गई थी। बिलआखिर मुसना बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कुछ कुछ करीबी साथियों के साथ मिल करके ना हाथी के ऊपर हमला किया, और उसमें हाथी को ही मार दिया। ये हाथी इतना बड़ा नहीं हो सकता था, इसलिए कि इनका हाथी मोस्ट लाइकली इन्होंने कहाँ से इम्पोर्ट किया होगा? इंडिया से, और इंडिया का हाथी इतना बड़ा नहीं होता। ठीक है, अफ्रीकन हाथी जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, उसको मारना ज्यादा मुश्किल होता है। बहरहाल तो इसमें बहुत सारे ईरानी कत्ल हुए, ईरानी बादशाह को जो पता चला तो उसको इतना शौक हुआ कि वो सदमे से ही मर गया। अब इसके बाद ईरानियों ने किसरा की बेटी को अपना हुक्मरान बनाया, लेकिन उसने भी जल्द ही तख्त छोड़ दिया। उसके बाद फिर एक आद और था साबूर नाम का आदमी, वो इनका बादशाह बना। ठीक है, तो ये सब कुछ ईरान के साथ होना शुरू हो चुका था। किस दिन से शुरू हुआ था? कि जिस दिन किसरा ने, जो उस जमाने का किसरा था नबी अलैहिस्सलाम के जमाने का, तो उसने नबी अलैहिस्सलाम के खत को फाड़ दिया था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको बद्दुआ दी थी कि तूने जिस तरह से मेरे खत को फाड़ा है ना, अल्लाह ताला तुम्हारी सल्तनत को इसी तरीके से टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो उसके बाद उसको उसके बेटे ने मारा, उस बादशाह को उसके बेटे ने मारा, फिर बेटे को जो है वो किसी और ने मारा, फिर उसके बाद अगला मारा, फिर अगला मारा, कोई सदमे से मारा है, बेटे ने ही गलती से जहर पी लिया था। हाँ, वो उसने अपने आप को खुद ही मार लिया। ठीक है, उसके बाद फिर होते होते बिलाखिर जो है वो किसरा की बेटी वो तख्त के ऊपर बैठी, और बेटी जो बैठी तो फिर तो नबी अलैहिस्सलाम पहले ही बता चुके थे कि जिस कौम की सरबरा औरत हो जाए ना, वो कौम कभी भी फला नहीं पा सकती। ठीक है, तो वो भी खत्म हुई। उसके बाद जो है वो दूसरा इस तरह से चलता गया मामला। बहरहाल तो मुसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर इन हालात से फायदा उठाया और मदाइन तक जा पहुंचे। साथ ही उन्होंने मजीद फौज के लिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिखा, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त तक बीमार हो चुके थे, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। तो हजरत मुसना बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए, और जब वो पहुंचे मदीना मुनव्वरा तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। बहरहाल अबू बकर सिद्दीक ने फौरन उनको बुलवा लिया अपने पास, और उनसे मुहाज की तफसीलात पूछी, यानी बैटल ग्राउंड और बॉर्डर्स की हालात पूछे। तो जब उन्होंने तफसील बताई, तो उसके फौरन बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अबू बकर सिद्दीक ने बुलाया और उनको फरमाया कि उमर, जो कुछ मैं कहता हूँ उसको गौर से सुनो। मेरा ख्याल ये है कि आज मैं दुनिया से रुख्सत हो जाऊंगा। ठीक है, वो दिन जो है वो पीर का दिन, मंडे, और पीर के दिन ही नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुख्सत हुए थे। तो अबू बकर सिद्दीक उनको इस बात की उम्मीद थी कि मुझे भी अल्लाह ताला उसी दिन वापस बुलाएंगे जिस नबी अलैहिस्सलाम
बुलाया।
ये जहर की तफसीलात मैं फिर भी मजीद नहीं मालूम कर सका। एक और किताब में भी देखा, लेकिन वहां पर भी बस इतना ही था कि अबू बकर सिद्दीक को जहर किया, और मजीद तफसील नहीं थी कि कब दिया था और किस एग्जैक्टली बंदे ने दिया था। कि अगर किसी को पता होता था तो ठीक है। तो फरमाया कि आज मुझे उम्मीद है कि मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। अगर वाकई ऐसा हो तो तुम शाम होने से पहले पहले लोगों को मुसना के साथ रवाना कर दो, और अगर मैं शाम तक जिंदा रहा तो सुबह होने से पहले ऐसा कर गुजरो। और कोई मुसीबत फौत कितनी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें दीन के काम और अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी से बाज ना रखे, और शाम का मार का सर हो जाए तो खालिद को फिर इराक वापस बुला लेना। उस वक्त तक ना अबू बकर सिद्दीक उमर रजी अल्लाह तआला को अपना खलीफा नॉमिनेट कर चुके थे, नामजद कर चुके थे। उसकी कुछ तफसीलात अब हम आगे पढ़ेंगे। मुझे याद आया कि हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं कराची में, हजरत शाह हकीम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह। गालिबन उनके हालात जिंदगी शायद आपने पढ़ी हो हीरोज क्लास के अंदर या नहीं। तो हजरत शाह हकीम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह की भी जब मर्ज़े वफात थी ना, तो उनका भी यही था कि मेरी वफात पीर के दिन। उनको बड़ा शौक था इस बात, ठीक है, तो बस वो एक चलता रहता था। बिल्कुल उनके ऊपर ऐसी हालत तारी हो जाती थी कि जैसे बस आज तो वो दुनिया से चले जाएंगे। बड़े जो है ना वो मुस्तरब रहते थे, परेशान रहते थे कि आज तो पीर का दिन नहीं है, आज मेरी जान निकल गई तो फिर वो सुन्नत रह जाएगी, ठीक है। तो करते करते अल्लाह अल्लाह करते करते पीर का दिन आया, और उस दिन जो है ना वो वाकई उनका इंतकाल हुआ, पीर के दिन का इंतकाल। तो उनकी जो तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, अल्लाह ने उसको भी पूरा फरमा दिया। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर की फतुहात का सिलसिला यहीं तक है। इसके बाद जो फतुहात हुई वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में हुई। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर जब बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई थी ना, तो आपके लिए भी सबसे बड़ा मसला फिर वही लौट के आया। कुदरतन हम उसी घर में बैठे हुए हैं जिस घर में आखिरी दफा इस टॉपिक के ऊपर बात हुई थी, ठीक है, यानी फैसल भाई के घर में ही। जब नबी अलैहिस्सलाम की वफात हुई थी तो उस वक्त सहाबाए कराम को सबसे ज्यादा फिक्र किस बात की थी? खिलाफत की फिक्र थी, खिलाफत की फिक्र। अच्छा, ये तो चले पता ही है अक्सर लोगों को, लेकिन जो इस घर के अंदर बात हुई थी ना, वो हम आपसे सुनना चाहते हैं कि इसकी वजह क्या थी जो हमने डिस्कस करी, ठीक है, इसकी वजह क्या थी कि उनको खलीफा की सबसे ज्यादा फिक्र क्यों थी? मुआज भाई को लगता है थोड़ी सी डांट शाट की जरूरत है। कौन से वाले नाम? ये वाले। अच्छा, वजह क्या बताई थी? जी साहब,
टावर्स गिरा
टावर्स गिरा देगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनको याद तो है, लेकिन इस वाले पॉइंट को थोड़ा और बेहतर तरीके से कोई एक्सप्लेन कर सकता है? आपसे बाद में पूछेंगे कोई और। टावर्स गिरा देगा शैतान, मेहनत खराब कर देगा, तो हाउ डज दैट हैपन, क्यों ऐसा हो जाता है?
बागी
बागी खड़े हो जाए। अच्छा माशाल्लाह, तो नहीं ऑनलाइन तो जो है ना वो जवाब बिल्कुल सही आ गया, ठीक है, तो अब ऑन साइट वालों को मौका देते हैं कि वो भी सही वाला जवाब अगर आपको याद हो क्या करें। जब कोई बड़ा रहनुमाई के लिए नहीं होगा तो फिर किससे पूछा जाएगा? सही, ठीक है। अच्छा, गर्ल्स की तरफ से भी जवाब आ रहे हैं। हाँ, सुभान अल्लाह, ठीक है, तो सही जवाब हम पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा, क्योंकि जब इंसान का कोई शेख नहीं होता तो उसका शेख शैतान होता है, जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख शैतान होता है। तो ये जाहिर है, जब एक इंडिविजुअल के ऊपर ये अप्लाई होता है, एक फर्द के ऊपर अप्लाई होता है, तो यही एक पूरी कौम के ऊपर भी अप्लाई होता है, ठीक है ना, क्योंकि कौम कैसे बनती है? अफराद को मिलाकर के कौम बनती है ना। तो अब एक कौम के अंदर 1,000 लोग हैं, 1,000 में से किसी का भी कोई शेख नहीं है, तो फिर 1,000ों का शेख जो है वो शैतान है, ठीक है। तो अब शैतान क्या करता है कि शैतान हमारी नेकियों को खत्म करने की कोशिश करता है, बर्बाद करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम कौन थे अपने जमाने में? नबी अलैहिस्सलाम शेख थे, ठीक है, और शेख के मद्दे मुकाबिल जो 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 उसका दुश्मन होता है वो कौन होता है? शैतान होता है, ठीक है ना। शेख का दुश्मन शैतान होता है, ठीक है। तो अब जब शेख होगा तो फिर शैतान हमला नहीं कर सकेगा, ठीक है। शेख जो है वो इल्म के जरिए से शैतान के रास्ते को रोकता है, इल्म के जरिए से, ठीक है ना। और अब जब शैतान, अब जब शेख नहीं है तो फिर शैतान के सामने कोई दीवार नहीं है, शैतान का रास्ता अब खुल गया। देर इज नो वन टू स्टॉप द शैतान, ठीक है ना। देर इज नो वन टू स्टॉप द शैतान फ्रॉम अमंग द क्रिएशन। ऑफ कोर्स अल्लाह इज देयर टू स्टॉप, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह इज देयर टू स्टॉप इवन द वायरसेस एंड द बैक्टीरियाज एंड एवरीथिंग एल्स, देन व्हाई डू वी डू एनीथिंग, राइट। जब अल्लाह है तो फिर मास्क पहनने की क्या जरूरत है, राइट। जब अल्लाह है तो बम बनाने की क्या जरूरत है, जब अल्लाह है तो मिसाइल बनाने की क्या जरूरत है भाई। उस वक्त यही जवाब होगा, नहीं, असबाब की जरूरत होती है, असबाब की जरूरत होती है, ठीक है ना। वहां पे अल्लाह भूल जाते हैं हम लोग, वहां पे असबाब याद आ जाते हैं। तो भाई शैतान से बचने के लिए असबाब की जरूरत नहीं होती, शैतान से बचने के लिए अल्लाह है ना बस। ये शैतान का ही धोखा है असल, ये असल में एक धोखा है जो कि शैतान ही ने लगाया है। कि नहीं वो कहता, नहीं, अल्लाह है ना, अल्लाह है ना बस, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें शेख की, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इमाम की, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें लीडर की, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम शेख थे, ठीक है ना। और शेख जो है वो अब दुनिया से रुखसत हो गए। बाकी लोगों के भी जवाब बल्कि पढ़ लेते हैं, इनका भी तो राइट बनता है ना। तो बॉयज में जवाब आया था कि क्योंकि जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख शैतान होता है, तो अगर कोई अमीर नहीं होता तो शैतान सारी मेहनत को बर्बाद कर देता है। नबी अलैहिस्सलाम ने 23 साल कितनी जद्दोजहद और कुर्बानियों के जरिए से मेहनत करी थी, एक पूरा का पूरा निजाम बनाया था। अब नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं तो शैतान ने क्या करना था, इमीडिएटली आकर के सबको तबाह कर देना था, ठीक है ना। और कैसे करना था, फूट डाल देता, मुसलमानों में लड़ाइयां शुरू हो जाती और गलत फहमियां पैदा हो जाती, सब आपस में लड़ लड़ा करके बराबर चट हो जाता सारा का सारा मामला, ठीक है। तो इस वजह से अबू बकर सिद्दीक रज़ान और दूसरे जो सीनियर सहाबा थे जैसे उमर फारूक रज़ान और हजरत साद बिन अबू उबादा रज़ियल्लाहु भी, वो भी सीनियर सहाबा थे, बहुत बुजुर्ग सहाबी थे, ठीक है ना। इन सबको इस बात की फिक्र हुई कि इमीडिएटली फौरन से पेशतर हमें नबी अलैहिस्सलाम की जानशीन की जरूरत है, हु कैन टेक नबी अलैहिस्सलाम प्लेस, जो कि नबी अलैहिस्सलाम की जगह पे आकर के शेख का रोल प्ले कर सके, अमीर का रोल प्ले कर सके, इससे पहले के शैतान हमला करे और सारी मेहनत को खत्म कर दे, ठीक है ना। उनको उस वक्त जो है ना वो सबसे पहले किसरा, कैसर और दूसरे इनकी फिक्र नहीं हुई, सबसे पहले उनको फिक्र किसकी हुई, शैतान की फिक्र हुई, ठीक है ना। क्योंकि कैसर और किसरा तो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूर थे ना, शैतान थाउजेंड ऑफ माइल दूर नहीं होता, शैतान तो यहाँ पे होता है, इधर लगा होता है ना। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूर नास, या ये कि वो जहां भी उसको मौका मिलता है वहां पे वो आता है, ठीक है, और हमारे दिनों के अंदर गलत फहमियां पैदा करता है और उसे, ठीक है। तो ये वजह थी कि सहाबा ने इस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत दी। इधर और क्या लिखा था कि क्योंकि उनको पता था कि जिसका शेख नहीं उसका शेख शैतान, ठीक है। माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो दिल खुश करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात आप लोगों को जो याद रहती है ना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, और ये अल्लाह ताला की तौफीक से होता है कि आप बात सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बात समझ में आती है और फिर आपको बात याद रहती है, ये अल्लाह की तौफीक से होता है, वरना ये आसान काम नहीं है इन बातों को समझना। आज सुबह ही आज जो है वो कुछ अंकल्स को बता रहा था कि अक्सर तो हमारी क्लास के अंदर किसी को कोई बात समझ नहीं आती, कुछ तकरार करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, तब कहीं जाकर के बात समझ जाए भाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला, और ये अल्लाह ताला की तरफ से बड़ों के ऊपर भी एहसान है कि बच्चों को बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि हमें इस मसले का हल मिल जाए। क्योंकि इस मसले को जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं इस मसले को, कि देखो सहाबा ने जो है नबी अलैहिस्सलाम पड़े हुए हैं घर के अंदर और उनको कफन दफन की फिक्र नहीं कर रहे, और इधर जो है वो लड़ाई कर रहे हैं आपस में, कौन खलीफा बनेगा, कौन खलीफा बनेगा। यानी इनको जो है ना दुनियावी बादशाह चाहिए थी, इनको इनको दुनियावी जो है वो ताकतें चाहिए थी, इनको इसकी बात की फिक्र थी कौन बादशाह बनेगा, कौन बादशाह बनेगा, ठीक
ठीक है ना। और नबी अलैहिस्सलाम की फिक्र ही नहीं थी उनको, नहीं, इनको जितनी नबी अलैहिस्सलाम की फिक्र थी ना, हम तस्वुर नहीं कर सकते उस फिक्र का। हम तो झूठी फिक्रें करते हैं ना, हम नबी अलैहिस्सलाम की फिक्र में पत्तियां लगाते हैं, हम नबी अलैहिस्सलाम की फिक्र में चिरागे करते हैं, हम नबी अलैहिस्सलाम की फिक्र में उल्टा नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को तोड़ते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के दीन को खराब करते हैं, ये हमारे नजदीक नबी अलैहिस्सलाम की फिक्र है। नहीं, ये शैतान ने इस फिक्र बना दी है, ये फिक्र नहीं है। असल फिक्र तो यह है कि नबी अलैहिस्सलाम की जो फिक्र थी उसको अपनी फिक्र बनाया, और आप की फिक्र ये थी कि अल्लाह के दीन को कायम किया जाए, ठीक है ना। और इसी की वजह से सहाबा कराम को फिक्र थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने दीन को कायम किया है, अब इसको बचाया जाए, शैतान से बचाया जाए, ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह को एग्जैक्टली यही फिक्र फिर से लाहिक हो गई। अब जब मेरे जाने का वक्त आ गया है तो अब कौन जानशीन बनेगा, अब कौन मुसलमानों का अमीर बनेगा, अब कौन शेख का रोल प्ले करेगा। तो उन्होंने जो है ना वो उमर फारूक रजील तारान के ऊपर फैसला किया। अच्छा, इन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट उमर फारूक रजान का फैसला किया, ठीक है ना, क्योंकि बात बिल्कुल क्लियर थी इनके लिए कि उमर फारूक रजान के अलावा और कोई इतना काबिल है ही नहीं इस वक्त जो कि मुसलमानों को लीड कर सके। लेकिन जब इन्होंने उमर फारूक रजान के बारे में सोच लिया तो उसके बाद फिर जो है ना उन्होंने मशवरे किए, ठीक है। तो इन्होंने फिर हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो एक बड़े सीनियर साहबी उस जमाने में थे, तो उनको बुलाया और उनसे पूछा कि उमर रतान के बारे में आपका क्या ख्याल है, मैं चाहता हूं कि उनको खलीफा बनाऊं अपने पीछे, ठीक है। अब्दुलरहमान बिन औफ रतान ने बड़ा मजे का जवाब दिया कि आप मुझसे ऐसी बात पूछते हैं जो आपको मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह पता है, आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। तो इस पर अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि फिर भी आखिर तुम्हारी क्या राय है, तो मशवरा तो दो ना कुछ, ठीक है। तो उन्होंने जवाब दिया कि इसमें कोई शक नहीं कि वो बेहतरीन आदमी है, लेकिन मिजाज में जरा सख्ती है, ये आपको भी पता है, ठीक है ना, सख्त है, कहते हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाजत दीजिए मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ, इसकी गर्दन उड़ा दूँ, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ, ठीक है। तो मिजाज में इनकी सख्ती है। तो ये सुनकर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे कि इसकी वजह ये है कि अभी मैं उनके ऊपर हूं और वो मुझे नरम पाते हैं, तो नीचे वाला जो होता है ना फिर वो सख्ती अफोर्ड कर सकता है, जब मैं ऊपर से चला जाऊंगा ना तो फिर उनको भी नरम पड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो वो मेरी वजह से जो है ना वो नीचे से वो सख्तियां वगैरह दिखाते रहते हैं, फिर उनकी सख्ती नरमी में बदल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया क्योंकि वो भी सीनियर मोस्ट सहाबा में से थे उस वक्त, तो फिर वही पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उन्होंने भी कहा कि नहीं फिर भी तुम भी बताओ ना तुम्हारी क्या राय है। तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि मुझे इतनी बात मालूम है कि उमर का बातिन उसके जाहिर से अच्छा है और हम में उन जैसा कोई और नहीं, यानी जाहिरी तौर पे वो सख्त नजर आते हैं ना, लेकिन अंदर से वो ऐसे नहीं है, वो अंदर से बहुत अच्छे इंसान है, ऊपर से थोड़े थोड़े से सख्त नजर आते हैं। तो फरमाया कि उनका बातिन उनके जाहिर से ज्यादा अच्छा है और हमारे दरमियान तो उन जैसा कोई और है ही नहीं, ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वो खुश हुए। फिर उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया तो उनसे पूछा, तो फरमाया उन्होंने कि मैं आपके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बेहतरीन आदमी समझता हूँ, आपके बाद खिलाफत का मुस्तहिक उनसे ज्यादा और कोई नहीं, ठीक है। फिर हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु आए, तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है। तो उनसे पूछा तो उन्होंने फिर जरा सा डिफरेंट जवाब दिया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आपको मालूम है कि उमर के मिजाज में बहुत सख्ती है, इसके बावजूद आप उन्हें अपना जानशीन बना रहे हैं, कल आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे, ठीक है। देखिए लोगों में ना ओपिनियंस का डिफरेंस होता है। अब ये कौन थे, ये सहाबे रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे और ये उम्मत के उलमाए कराम थे, और उलमा में इल्मी इख्तिलाफ का होना ये कोई बहुत ही अनयूजुअल और बहुत बुरी बात नहीं है, ये होता है, ठीक है ना, सहाबा के दरमियान भी होता था। तो अगरचे के दूसरे सहाबा ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के साथ एग्री किया, लेकिन किसी ने एग्री ना भी किया तो ऐसा भी हो जाता है, इसमें कोई परेशान होने की और घबराने की बात नहीं होती। तो उन्होंने अपना मौकफ पेश कर दिया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनसे एग्री नहीं किया। तो उन्होंने फरमाया कि मुझे जरा बिठा दो, यानी उनका ना थोड़ा सा गुस्सा है तलाने की बात की, उन्होंने लोगों को कहा कि मुझे जरा बिठा दो। तो जब वो बैठ गए तो आपसे रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि तुम मुझे अब मेरे परवरदिगार से डराते हो, मैं जब अपने रब से मिलूंगा तो अगर उसने मुझसे इस सिलसिले में सवाल किया ना कि तुम उमर को क्यों बना करके आए हो, तो मैं उससे कहूंगा कि ए अल्लाह, मैंने तेरे बंदों पर एक ऐसे शख्स को मुकर्रर किया है कि जो कि उनमें बेहतरीन शख्स, ठीक है ना, यानी इतना एतमाद था अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु को अपने इस चॉइस के ऊपर उमर रज़ियल्लाहु के बारे में। फिर उस्मान रज़ियल्लाहु को उन्होंने फरमाया कि आप जो है ना वो ये लिख दें इस बात को कि मैं उमर को जो है वो अपना खलीफा बनाता हूँ। अब इतने सारे लोगों से मशवरा कर लिया, तो अब जो है ना वो लिखने के लिए फरमाया, तो उस्मान रज़ियल्लाहु जो है वो कलम दवात लेकर के बैठे। इतनी देर में नहीं, अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वो अहदनामा है जो अबू बकर बिन अबी कहाफ ने, अबी कहाफा ने मुसलमानों के लिए लिखवाया है। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ने लिखना शुरू कर दिया। इतने में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के ऊपर बेहोशी तारी हो गई, ठीक है, गशी तारी हो गई और यानी अनकॉन्शियस हो गए। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु को इतनी फिक्र हुई इस बात की, जी उस वक्त जिंदा थे, नहीं उनका की इंतकाल से पहले इंतकाल हो गया था जहां तक मुझे याद है। तो उस्मान गनी को देखें, फिक्र की आप फिक्र की इंतहा देखें कि खलीफा की नामजदगी कितनी अहम थी उन लोगों के नजदीक, कि उस्मान गनी रतान को फिक्र हो गई कि कहीं अबू बकर सिद्दीक रतान का इंतकाल हो गया और ये तहरीर मुकम्मल नहीं हुई ना तो फिर तो मसला पड़ जाएगा, ठीक है, शैतान को मौका मिल जाएगा, वो सारे किए कराए के ऊपर पानी फेर देगा। तो उस्मान गनी रतानों ने अपनी तरफ से लिख दिया, क्योंकि उनको पता था ना कि अबू बकर सिद्दीक रतानी फैसला कर चुके हैं, अब बस खाली लिखवाना रह गया है। तो उन्होंने जल्दी जल्दी अपने हाथों से खुद ही लिख दिया, ठीक है ना, इंतजार भी नहीं किया। इतनी देर में अबू बकर सिद्दीक रतानों को होश आ गया। तो उन्होंने आपसे पूछा तो कि भाई तुमने क्या लिखा, तो उस्मान ने जवाब दिया कि मैंने जो है ना वो ये लिखा है कि मैंने तुम पर उमर इब्ने खत्ताब को खलीफा मुकर्रर कर दिया है और मैंने इस मामले में तुम्हारी खैरख्वाही में कोई कमी नहीं की है। ये उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ने अपनी तरफ से लिख दिया, ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु बहुत खुश हुए ये सुन करके और बोल उठे कि अल्लाह अकबर, अल्लाह तुम्हें जजाय खैर अता फरमाए, अब ये लोगों के दरमियान जाकर सुना दो। उस्मान रज़ियल्लाहु की दावत पर सब लोग जमा हो गए। उस्मान रज़ियल्लाहु ने खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पढ़कर सुनाया और सब ने इस फरमान को खुशी से कबूल किया। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु खुद छत पर तशरीफ ले आए और फरमाया कि लोगों, मैंने जिस शख्स को खलीफा मुकर्रर किया है वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम जानते हो ये मेरी फैमिली का है नहीं ये बंदा, बल्कि वो उमर है, क्या तुम इन्हें कबूल करते हो? सबने एक आवाज में जवाब दिया कि हमने सुना और हमने अतात, समयना अता, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आता है वो फरान का रबना वही, ठीक है ना, लेकिन पहले समय ना वो अता है, ठीक है, फिर अल्लाह ताला की तरफ से गलतियों के तौर की मगफरत हो जाती है। अल्लाह ताला हमें भी इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए और अपनी रजा वाली जिंदगी पे चलना हमारे लिए आसान फरमाए। बस यहाँ पे जो है वो हम आपकी क्लास रोकते हैं, उसके बाद में कससुल अंबिया वाली बात इंशाल्लाह शुरू होगी। किसी को कोई सवाल है अगर 2-4 मिनट में सवाल पूछना चाहे तो चल, एनीवे आप लड़ाई लेंगे तो हमें तो लगेगा आप सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई सवाल नहीं है तो मैं आप क्लास बंद करते हैं, आपको बताऊंगा।